निराला ने स्वयं ही बिंब की श्रेणी का संकेत कर दिया है, अंतः स्पंदित मौन का बिंब। राम की शक्ति पूजा के प्रलय के चित्र में ब्रह्मांडीय कास्मिक तथा विभाकार श्रेणी के बिंब हैं, और दोनों मिलकर इस चित्रण को अप्रतिम बना देते हैं। अमानिशा और मशाल के परस्पर विरोधी उपकरणों से निर्मित बिंब है अमानिशा जलती मशाल में भूअस्त्रीय तम विचलित स्तब्धता को आधार बनाया गया था। यहाँ समूचा ब्रह्मांड ऊपर नीचे होने लगता है। शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्पीत वच्छ डॉट 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 डॉट। शत वायु वेग बल डुला अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज धन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एक दस रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। प्रलय का यह बिंब कामायनी के प्रलय वर्णन से आकार में जितना लघु है, प्रभावत्ता में उतना ही बड़ा। हनुमान की विभाकार ग्रोटेस्क बिंब इसे और भी रोमांचकारी बना देता है। राम की शक्ति पूजा में एक यातु परक बिंब भी है जो अत्यंत सशक्त है। संदर्भ है राम के द्वारा शक्ति के विषय में अपने पूर्व वक्तव्य, अन्याय जिधर है उधर शक्ति के स्पष्टीकरण का। राम युद्ध में शक्ति की प्रतिपक्षधरता की भी बात करते हुए स्थिति का जैसा चित्र उपस्थित करते हैं, वह यातुपरक है और भयजनक है। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक, नभ में अशंक हत मंत्र पूत शर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, विचलित लख कपि दल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झक झलकती वहिन वामा के दृग त्यों त्यों, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खींचा न धनु मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त। समूचा बिंब यातुपरक है। चलाए गए बाणों का आत्म विलयन, नेत्रों में ज्वाला का तीव्रतर होना और फिर एकाटक देखना, नाटक जैसी स्थिति, ये क्रियाएं अप्राकृत हैं, किंतु शक्ति के दिव्य व्यक्तित्व से जुड़ी होने के कारण ये संभाव्य भी नहीं प्रतीत होती। ऐसी ही यातुपरक बिंब कालिदास ने भी रघुवंश में दिया था, जहाँ नंदिनी पर आक्रमण करने वाले सिंह पर बाण चलाने की चेष्टा करते हुए दिलीप की उंगलियाँ धनुष पर जड़ीभूत हो गई थी और वह किसी चित्र के ही समान विजड़ित हो गए थे। रघुवंशकार ने इस बिंब को थोड़ा और व्याख्यायित करते हुए दिलीप के लिए एक और सशक्त बिंब आगे दिया है। मंत्रोषधिरुद्ध वीर्य सर्प के रूप में राम की शक्ति पूजा के राम की भी स्थिति लगभग वही थी। अंतर यह है कि राम इस स्थिति से अपनी साधना के आधार पर उभरते हैं, जबकि दिलीप को उनके सत साहस का प्रतिफल उनके आत्म त्याग के तात्कालिक संकल्प के साथ ही प्राप्त हो जाता है। फर्क बहुत नहीं है, किंतु यह रेखांकित करना समीचीन होगा कि राम को वांछित परिणाम पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। कालिदास ने दिलीप पौराणिक अति प्राकृत लोक के चरित्र हैं, जब निराला के राम उन्हीं के समान प्राकृत हैं। यही कारण है कि राम शक्ति की अन्यायपूर्ण पक्षधरता को प्रत्यक्ष देखकर भी क्रोधांध सर्प के समान फुफकारते नहीं, मन महसूस कर रह जाते हैं, केवल आश्चर्य विजड़ित रह जाते हैं और दुखी होते हैं। राम का यह रूप आधुनिक युग के मनुष्य की निरुपायता का व्यंजक है। राम की शक्ति पूजा की ही तरह अंधेरे में भी समग्रता बिंबात्मक कविता है। निराला में वस्तुपरक चित्रांकन का वैशिष्ट्य है, तो मुक्तिबोध में बिंबात्मक चिंतन का। निराला का बिंब विधान ठीक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य चिंतन की अनुरूपता में है। यद्यपि शुक्ल जी की परंपरावादी काव्य दृष्टि के संदर्भ में यह बात अजीब लग सकती है, शुक्ल जी का मानना है कि कविता का धर्म बिंब ग्रहण कराना है मात्र, अर्थ ग्रहण कराना नहीं। दूसरी ओर मुक्तिबोध बिंबात्मक चिंतन को कविता में सर्वोपरि महत्व देते हैं और उसे अपनी कविता के माध्यम से एक विशिष्ट काव्य शैली के रूप में चरितार्थता भी देते हैं। मुक्तिबोध का काव्य विषयक यह अवधारणा आदिम फंतासीय विचार पद्धति से जुड़ी हुई है और इसे यों ही नकारा नहीं जा सकता। अंधेरे में और राम की शक्ति पूजा में एक आश्चर्यजनक समान धर्मिता यह भी है कि दोनों कविताओं में मिलने वाले बिंब लगभग एक जैसी प्रकृति के हैं। उनकी जाति प्रजाति एक ही है, अंतर केवल प्रस्तुति परक निरंतरता और अंतराल धर्मिता या अंतराल कौशल का है। मिसाल के तौर पर दोनों कविताओं से समकोटिक बिंबों का संदर्भण प्रासंगिक होगा। राम की शक्ति पूजा में राम का जो पराभव व्यंजक बिंब रघुनायक आगे अवनि डॉट डॉट कहीं पर दिया गया है, वह अत्यंत सघन ठोस एवं निरंतर है। अंधेरे में का कथाकार स्थूल न होकर अवचेतनाश्रयी एवं अमूर्त है, अतः उसके रचनाकार से हम इस प्रकार के ठोस बिंबों की अपेक्षा सदैव और सर्वत्र नहीं कर सकते। किंतु मुक्तिबोध में समूचा बिंब प्रस्तुत करने की क्षमता है, टुकड़ों टुकड़ों में ही सही। निम्नांकित पंक्तियाँ थोड़ा थोड़ा अंतराल लेकर आती हैं, किंतु उनसे एक व्यक्तित्व का निर्माण समग्रता होता ही है। कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, डॉट 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 डॉट, नुकीली नाक और भव्य ललाट है, दृढ़ हनु, डॉट 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 डॉट, कौन मन, डॉट डॉट डॉट, गौरवर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख, डॉट डॉट, भव्य अनजानु भुज, डॉट डॉट, प्रतिमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, डॉट डॉट डॉट, गालों पर चट्टानी चमक, पठार की आँखों में किरणली शांति की लहरें।